बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी। मैं भी भूल गया था कि मेरा आज जन्मदिन है, लेकिन सुबह में मुझे याद आया था और मैं खुद को कोस रहा था कि ये कल मुझे याद आना चाहिए था ताकि मैं कुछ स्वीट्स लाने के लिए बोलता हूँ। हाँ जी, तो अभी लोनावाला में अपने दोस्त है, उनको अगर फोन करे तो भी, वो कोई आता है तो ला सकते हैं।
एक बात है, डॉक्टर सुरेश भुले इन्होंने अनाउंस किया कि वो उनकी तरफ से आपके जन्मदिन के मौके पर लोगों को मिठाई खिलाएंगे शाम शाम।
पिछले तीन दिनों से हम ये प्रतित्य समुत्पाद या कार्य कारण भाव या कर्म सिद्धांत या कर्म विपाक इसको देख रहे हैं, और आते आते हम भवचक्र की ओर अभी कल से आए हैं। और भवचक्र की जो ये जो 12 कड़ियां हैं, जो चौथा सर्कल है उसमें जो 12 कड़ियां हैं या 12 निदान है, उसके बारे में अभी हम जानकारी ले रहे थे। तो कल हमने देखा था कि भगवान बुद्ध उदान में क्या कहते हैं, तो उन्होंने पहले इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है वगैरह वगैरह, वो पूरे 12 निदानों को उन्होंने बताया। और अंतिम में जाति के बाद वे कहते हैं कि जब जरा मरण आता है तो केवल जरा मरण ही नहीं तो खिन्नता है, दौर्मनस्य है, दुख है, पीड़ा है वगैरह वगैरह, ये सब बातें, यानी दुख का एक गोला हम झेलते रहते हैं। फिर दूसरी तरह से बुद्ध ने बताया कि अगर अविद्या है, अविद्या नष्ट हो गई तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, या संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये निरोध का मार्ग भी भगवान बुद्ध ने बताया था। और वे वहां कहते हैं कि जब जाति का निरोध होता है तो फिर जरा मरण वहां नहीं रहता, वहां दुख नहीं रहता, वहां पीड़ा नहीं रहती, वहां खिन्नता नहीं रहती, दौर्मनस्य नहीं रहता, तो वहां फिर दुख का गोला पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वहां जो अवस्था है वो असंस्कारित अवस्था जिसको हम कहते हैं, या अनकंडीशन बीइंग, ये जो अवस्था है वो वह व्यक्ति प्राप्त करता है। और एक बात हमने देखी थी कि अविद्या से जब शुरुआत होती है तो अपना मन ये प्रतिक्रियात्मक होता है, प्रतिक्रिया देते रहता है, हर एक चीज को प्रतिक्रिया देते रहता है, लेकिन ये नष्ट हो जाते हैं, उसके कारण नष्ट हो जाते हैं तो हमारा मन सृजक बनता है। और सृजक बनने का मतलब है हम कौन सी अवस्था में गए हैं, संस्कृत अवस्था में या संस्कारित अवस्था में हम गए हैं, सॉरी असंस्कारित अवस्था में हम गए हैं। और उसके बाद में हमने 12 निदानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, और वो जानकारी में हम ये देख रहे थे कि मैं और मेरा ये वहां बहुत हावी होता है, हर एक चीज पर मैं और मेरा ये हावी रहता है, और हर एक चीज इस जरिए से ही हम देखते रहते हैं, ये मेरा है क्या, इसमें मैं हूं क्या, या मेरा कुछ रोल है क्या, मेरी कुछ भूमिका है क्या, इस तरह से हमेशा हम ये तुलना करते रहते हैं अपनी और दूसरों की। तो दूसरों से हम कैसे ऊंचे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों के जैसा मैं नहीं हूं, ये न्यूनगंड भी हमारे अंदर पैदा होता है। दोनों भी बातें होती है, ऊंचा भी हम देखते हैं या नीचा भी देखते हैं हम, तो दोनों भी बातें हम देखते रहते हैं। लेकिन इस अविद्या और तृष्णा को जब हम पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि आपकी अवस्था जो है वो सृजक मन की अवस्था है या असंस्कृत मन की अवस्था है। आज हम जरा विस्तार से इन कड़ियों को देखने वाले हैं, इन निदानों को देखने वाले हैं। तो पहला निदान है अविद्या। अविद्या का मतलब बौद्धिक स्तर पर अज्ञान का होना यह नहीं है, यानी कोई अनपढ़ है उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है तो वो अविद्या से भरा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो बुद्धि से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां वास्तव में प्रमुख बात यह बताई गई है कि आध्यात्मिक जागृति का अभाव जिसमें होता है वह अविद्या से भरा हुआ है या वह अज्ञानी है। केवल आध्यात्मिक जागृति का ही अभाव उस व्यक्ति में होता है ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक जीवन का भी अभाव उसमें हमें दिखाई देता है। आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक जीवन ही वह ठीक तरह से जीता नहीं है, तो ऐसे लोगों में अविद्या मौजूद होती है ऐसा हम देख सकते हैं। अविद्या यह बोधि के विरुद्ध है, जहां बोधि नहीं है वहां अविद्या है, और बोधि को ही हम प्रज्ञा कहेंगे, जहां प्रज्ञा नहीं है वहां अज्ञान है या अविद्या है। यदि हमारा उद्देश्य बोधि प्राप्त करने का हमने बना लिया है तो फिर अविद्या को जड़ से हमें उखाड़ना पड़ेगा, तभी हम बोधि का उद्दिष्ट जो है, बोधि का उद्देश्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये अविद्या है तब तक बोधि वहां नहीं आ सकती। ऐसा भी एक उदाहरण दिया गया है कि यदि बोधि यह पर्वत का शिखर है तो अविद्या जिन खाइयों से हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और वह खाई अंधकार से भरी हुई है, ऐसे इसको अविद्या कहा है। तो इसका प्रतिनिधित्व अविद्या करती है, यानी पर्वत है लेकिन पर्वत के बाजू में खाई भी होती है, वैली भी होती है, और वह वैली पूरी पेड़ों से भरी हुई है, जंगल से भरी हुई है और अंधेरा है। तो इस तरह से हम अभी खाई में हैं, अंधेरे में हैं, लेकिन पर्वत की ऊंचाई, पर्वत का शिखर जो है यह बोधि का स्तर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अविद्या यह निदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कल भी हमने देखा था कि इसको पहले लिया गया है, इस श्रृंखला में उसको पहला स्थान दिया है, क्योंकि अविद्या में बहुत सारी मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दृष्टिकोण हमारे बने हुए रहते हैं। एक मिथ्या दृष्टिकोण ऐसा होता है कि हम कंडीशनड है, हम संस्कारित है, लेकिन हम असंस्कारित है ऐसा हम समझते हैं। ये पहला मिथ्या दृष्टिकोण है। हमारा जीवन भौतिक जीवन है, लेकिन हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं। यह गलतफहमी है। हम भौतिक जीवन ही बिता रहे हैं, तो भौतिक जीवन या लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन या लोकोत्तर जीवन उसका अनुभव हमें पता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, ऐसे अभी अपने संग में भी कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं धम्म क्लास कर रहा हूं, शिविरों में जा रहा हूं, इधर ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो अभी बहुत नजदीक पहुंचा हूं मैं अभी। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, हम चल रहे हैं उस रास्ते पे, लेकिन मंजिल बहुत दूर है, ये हमें समझना है और जरा ग्राउंड पर आना है। हवा में तरंगने का नहीं है ज्यादा, जरा अपने पैर जो है वो जमीन पर ही रखना है। एक जगह में बंती जी कहते हैं कि हम आध्यात्मिक कब बनते हैं, जब जो चार अवस्थाएं संयोजन के माध्यम से, जब हम चार अवस्थाएं देखते हैं, श्रोतापन्न अवस्था, सकृतागामी अवस्था, अनागामी अवस्था और फिर अरहत पद, ये जो चार अवस्थाएं हैं, तो बुद्ध कहते हैं, भंते जी भी कहते हैं कि हम आध्यात्मिक कब बनते हैं, जब अनागामी अवस्था हम जब पार करते हैं तब हम वास्तव में आध्यात्मिक बनते हैं। उसके पहले हम अपने को आध्यात्मिक है ऐसा भी हम सही मायने में नहीं कह सकते। तो आध्यात्मिकता अगर हम देखें तो वो बहुत और आगे है। अभी हम सिर्फ एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी का हमारा जो हाल है वो अगर देखें हम, तो दूसरा एक मिथ्या दृष्टिकोण हमारे अंदर बड़ा हुआ रहता है, वो ये है कि हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि मैं हमेशा के लिए वे जीवित रहने वाला हूं, और उस दृष्टिकोण को हम पकड़कर बैठते हैं, उस दृष्टिकोण को हम पकड़कर बैठते हैं और उसे जब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा के लिए जीवित तो नहीं रह सकते, तो इस दृष्टिकोण को जब हमें छोड़ना पड़ता है तब हमें दुख होता है। ये दुख का कारण बन जाता है कि हमने इस मिथ्या दृष्टिकोण को पकड़ा हुआ होता है कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहने वाला हूं, लेकिन ये बात नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक मिथ्या धारणा है कि हम अपने निजी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यानी हम बहुत सारे घरों में ये बात देखते हैं कि घर का ईश्वर कुछ अलग होता है और बाहर का ईश्वर कुछ अलग होता है, और बाहर के जो बड़ा हॉल होता है उसमें बुद्ध बाबा साहब रहते हैं, अंदर के हॉल में उनका दूसरा कुछ रहता है। तो ये अभी तक चल रहा है, ये बाबा साहब को पता था इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है हमें याद भी नहीं है और वो हम देखते भी नहीं है, वो अभी कालबाह्य हो गई है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, और फिर पीछे से बहुत सारे देवी देवताएं अभी अंदर घुस रही है। तो ये मिथ्या धारणा है कि हमारा बाहर का भगवान कुछ अलग है अंदर का भगवान कुछ अलग है, अंदर का ईश्वर कुछ अलग है, बाहर का कोई अलग है। और हम फिर ऐसा समझते हैं कि ये अंदर वाला ईश्वर है ना, वो बहुत सुपर 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 है वो, और ये बाहर का है ना, ये अभी शुरू हुआ है वो, ये बहुत पहले से है। और फिर बुद्ध धर्म ऐसे ईश्वर के प्रवृत्ति को मानता नहीं है, उसका कोई इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे ईश्वर को पितामह मानते हैं, ऐसे जो उनके ईश्वर बने हुए हैं उनको पितामह मानते हैं, अपने पिताजी के समान मानते हैं। और जैसे बच्चा पिताजी से डिमांड करता है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वैसे हम ईश्वर से फिर डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और हमें वो मिलता है। क्योंकि उनको अभी ये पता चला है कि बुद्ध के सामने गए और माथा भी फोड़ दिया तो भी बुद्ध कुछ देने वाला नहीं है, और हमें तो कुछ चाहिए, तो फिर वो ईश्वर को पकड़कर वो मांगने की कोशिश करते हैं। ये एक मिथ्या दृष्टि है, ये हमने ध्यान में रखना है। तो ये ईश्वर को मानना, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी आध्यात्मिक अपरिपक्वता को हमने उजागर करना है। दिस इज इमैच्योरिटी, स्पिरिचुअल इमैच्योरिटी जिसको कहते हैं, ये हमारे अंदर होती है। और ये सब किसके कारण हम देख रहे हैं, तो अविद्या के कारण ही ये सब हो रहा है। दूसरी एक मिथ्या धारणा है कि गंगा नदी में अगर हम डुबकी मार देते हैं तो हमारा पाप पूरा धुल जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म में पाप धोने का ये बहुत कठिन काम है, सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन ये हिंदुइज्म में बड़ा अच्छा सीधा सीधा मामला है कि नदी में जाओ डुबकी मारो और पाप को धो डालो। एक बार विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनको ऐसा ही सवाल पूछा गया कि ये सब लोग गंगा नदी में जाते हैं और डुबकी मारते हैं तो सही भी उनके पाप धुल जाते हैं क्या? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, उनके पाप धुल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये आदमी जब नदी की तरफ जाता है तो वो पाप है ना, कौवा बन के पेड़ पे बैठ जाते हैं, कौवा बन के पेड़ पे बैठ जाते हैं, फिर ये जाके वहां डुबकी मारता है और डुबकी मारने के बाद जब बाहर आता है तो वो कौवा फिर उसके शरीर में घुस जाता है और वो पाप वैसे ही वैसा रहता है। तो इस तरह की ये मिथ्या धारणा लोगों की है कि नदी में पाप अगर डुबकी मारे तो पाप धुल जाएगा, ये भी अविद्या का ही कारण है। अभी अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, अविद्या कैसे निर्माण होती है, तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जब पैदा होती है तब अविद्या का निर्माण होता है। तो विशिष्ट परिस्थिति वो कौन सी है, तो काया वाणी और मन के द्वारा जो हम अकुशल कर्म करते हैं इसके माध्यम से अविद्या का जन्म होता है। काया वाणी और मन के जो अकुशल कर्म है, तो इस वर्तमान काल में जो हम दुख भुगत रहे हैं ये परिणाम किसका है, तो भूतकाल में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, अकर्म किए हैं, अकुशल कर्म किए हैं, इसलिए हमें ये दुख भुगतना पड़ रहा है। दूसरी एक बात है कि अविद्या हमारे अंदर क्यों है, तो इसका मतलब यह है कि लोभ द्वेष मोह से हमारा मन भरा हुआ है, इसलिए हम अविद्या से भरे हुए हैं। तो लोभ द्वेष मोह यह भी एक अविद्या का कारण है। अभी आधुनिक जगत में हम अगर देखते हैं तो अविद्या इस कैसे ये अभी दिख रही है या लोग उसका अनुभव कर रहे हैं, वो ये है कि उनको लगता है कि मैं अगर सुखी रहना चाहता हूं तो दूसरों को मैं नष्ट करना चाहिए, तो इसलिए फिर सुसाइड बॉम्बिंग है, उसके बाद में ये निसर्ग में जो पेड़ पौधे हैं उसको काटना है, क्योंकि मुझे सुख मिलना चाहिए, ये उसमें इच्छा है उसकी। इसके लिए वो ये सब बातें आदमी कर रहा है, साइंस का सहारा लेके ये कर रहा है, तो ये भी कहते हैं कि ये भी अविद्या का ही कारण है, क्योंकि उनपे उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बॉम्बिंग अगर हम करते हैं, अणुबॉम का स्फोट अगर होता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक बार आइंस्टाइन को पूछा गया था कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है कि नहीं, तो बोले तीसरा महायुद्ध नहीं होगा, और यदि होगा तो ये पूरे हथियार बित्यार सब कुछ है, शस्त्र ये पूरे नष्ट हो जाएंगे, और गिने चुने जो लोग बच जाएंगे उनको अगर झगड़ा करना है तो लाठी के बगैर दूसरा कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लोग हमेशा ही बड़े बड़े राष्ट्र है ये हमेशा ही खाली धमकियां देते हैं कि ये करूंगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा ये, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि उसको भी पता है कि वो डाल दिया तो दूसरा भी कोई बॉम्ब डाल देगा, उसका भी देश खत्म हो जाएगा और इसका भी देश खत्म हो जाएगा, बचेंगे लोग लाठी लेके लड़ेंगे, और क्या लड़ेंगे फिर, वो उनमें कुछ ताकत तो होनी चाहिए लड़ने के लिए, क्योंकि अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी का जो बॉम्बिंग 1945 में हुआ था अभी भी लोग परेशान हैं, कितने लोग, लाखों लोग वहां मर गए, अभी भी लोग परेशान हैं। लेकिन एक बात मैंने पढ़ी थी कि जिसने बॉम्ब डाला था, हवाई जहाज से जो बॉम्ब डाला था, वो बाद में पागल हो गया और मर गया, क्योंकि उसने देखा, वो बॉम्ब डालने के बाद देखा कि क्या सब ध्वस्त हो गया, पूरे उध्वस्त हो गया, सब लोग मर गए हैं, तो उसने देखा, और बाद में अमेरिका जाने के बाद वो पागल हो गया और मर गया वो, यानी ये भी अकुशल कर्म है, और अकुशल कर्म का जो परिणाम है तो वो परिणाम उसने पागलपन में भुगत लिया। अलंकारिक तौर पर अविद्या को बड़े अच्छी तरह से बताया गया है कि अविद्या यह प्रकाश का अभाव है, अविद्या यह प्रकाश का अभाव है, मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार की यह अवस्था है, मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार की यह अवस्था है, जिसको हम अज्ञान कहेंगे या अविद्या कहेंगे। अभी हम दूसरे निदान की ओर आएंगे, दूसरा निदान है जिसको इंग्लिश में कर्म फॉर्मेशंस कहते हैं या संस्कार कहते हैं। संस्कार का लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ ऐसा बताया है कि जिसको तैयारी कहते हैं, प्रिपरेशन, संस्कार का मतलब है प्रिपरेशन या सेटिंग अप या कुछ चीज का निर्माण करना, तैयार करना। तो यहां हम जो तैयार करते हैं वो किसकी बदौलत है, किसके कारण हम ये तैयार कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा से किए हुए कर्म, यह वहां यह दर्शाता है, अपनी इच्छा से किए हुए कर्म उसको संस्कार कहा गया है। हम जो जो कुछ इच्छा से कर्म करते हैं, विशिष्ट मन की अवस्था को इच्छा से किए हुए कर्मों से जोड़ना, विशिष्ट मन की अवस्था को इच्छा के कर्मों से जोड़ना, उसे संस्कार कहते हैं। तो यहां कर्म के बारे में बुद्ध बताते हैं। तो ये कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे ऊपर ये संस्कार, उसके माने संस्कार से हम भर जाते हैं, वो ये है कि काया वाणी और मन से किए हुए कर्म, काया वाणी और मन से किए हुए कर्म, और यह मन की अवस्था, इन कर्मों के माध्यम से की हुई मन की अवस्था यहां प्रदर्शित होती है। अभी काया वाणी मन से जो अवस्थाएं प्राप्त होती है वह कुशल भी होती है और अकुशल भी होती है। लेकिन यहां हम ज्यादा अकुशल बातों पर जोर दे रहे हैं, अकुशल मानसिक कर्म पर जोर दे रहे हैं। तो अकुशल मानसिक अवस्थाओं पर लोभ, द्वेष और मोह का प्रभाव होता है। हमारे जो कायवाणी मन से जो अकुशल कर्म हम करते हैं उस पर क्या होता है? लोभ, द्वेष और मोह का प्रभाव होता है। और कुशल मानसिक अवस्थाओं पर, कुशल मानसिक अवस्थाओं पर किसका प्रभाव होता है? तो संतुष्टि, दान, करुणा और मन की स्पष्टता, संतुष्टि, दान, करुणा और मन की स्पष्टता, इनका प्रभाव होता है। तो अपने चर्चा के लिए ये प्रश्न हमें लेना है कि अकुशल मानसिक अवस्था और कुशल मानसिक अवस्था ये कैसे होती है? दोनों में भी काया वाणी मन का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन अकुशल मानसिक अवस्था लोभ, द्वेष, मोह से भरी हुई होती है और कुशल मानसिक अवस्था संतुष्टि, दान, करुणा और मन की स्पष्टता, इनसे प्रभावित होती है। तो यहां हमें चर्चा ये करनी है कि हमारी, हम कहां तक अकुशल मानसिक अवस्था में है और कहां तक हम कुशल मानसिक अवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां संस्कार जब हम देख रहे हैं तो हम कुशल मानसिक अवस्थाओं को यहां नहीं देख रहे हैं, तो अकुशल मानसिक अवस्थाएं जो है उसको ज्यादा जोर दे रहे हैं, उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ये जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं उसका परिणाम बुरा पुनर्जन्म होता है। अकुशल मानसिक अवस्था के परिणाम मतलब बुरा पुनर्जन्म है, और कुशल मानसिक अवस्थाओं का परिणाम जो है वो अच्छा पुनर्जन्म है। लेकिन यहां बुरा पुनर्जन्म हो या अच्छा पुनर्जन्म हो, लेकिन बुद्धिज्म के अनुसार ये दोनों भी अविद्या में ही जुड़ गए हैं। या अच्छा पुनर्जन्म हो या बुरा पुनर्जन्म हो, दोनों भी किससे जुड़े हुए हैं? अविद्या से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि बुद्धिज्म में पुनर्जन्म बड़े अलग ढंग से माना गया है। बुद्ध धर्म कहता है कि अच्छा पुनर्जन्म अथवा अच्छे पुनर्जन्म के लिए क्या करना, यह अविद्या ही है। यदि आप अच्छा पुनर्जन्म पाना चाहते हैं तो आप क्या क्या करना चाहते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये सोचना भी अविद्या है। बुद्ध धम्म यह नहीं, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि पुनर्जन्म होना है, यह उसका उद्देश्य नहीं है। तो बुद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? तो बुद्ध धर्म का उद्देश्य इस भव चक्र से छुटकारा पाना है, यह हमारा उद्देश्य है। केवल भव चक्र से ही छुटकारा पाना यह उद्देश्य नहीं है, तो जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इससे भी छुटकारा पाना है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म ये सब बातों से छुटकारा पाना है, यह बुद्ध धर्म का ध्येय है। अभी भगवान बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह अविद्या और संस्कार की तुलना की है। अभी अविद्या हमने देखी, अभी अभी संस्कार भी देख रहे हैं, तो इनकी तुलना बुद्ध धर्म ने बुद्ध ने की है। बुद्ध कहते हैं कि अविद्या की अवस्था यह आदमी नशे में चूर हो जाता है ऐसी होती है। तो अविद्या से भरा हुआ आदमी, इसका मतलब क्या है? जो नशे में चूर है ऐसे आदमी को अविद्या कहा है। और संस्कार का मतलब है उस नशीली अवस्था में जो कुछ हरकतें करना, उसको संस्कार कहा है। यानी दोनों में नशा है, दोनों में भी नशा है। तो एक नशा क्या कहती है कि नशा वो पी पी के बिल्कुल उसको अभी इधर हिलना डुलना कुछ नहीं आ जाता है, और जब आदमी को ज्यादा चढ़ जाती है तो फिर वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। तो ये नाचने झूमने की अवस्था है, यह संस्कार है, यह संस्कार है। इसका मतलब मूल तो दारू है, हा? फिर पीना और झूमना। तो पीना ये अविद्या है और झूमना ये संस्कार है। तो बुद्ध कहते हैं कि लोग हमेशा ही कर्म करते हैं, लेकिन हर रोज जब कर्म करते हैं तो पारंपरिक धर्म के अनुसार वो कर्म करते हैं, मानो जैसे वो नशे में चूर है, मानो वो नशे में चूर है। इस तरह से वो पारंपरिक स्वरूप से अपने अपने कर्म करते रहते हैं। इसमें आदमी जब हम कहते हैं तो स्त्री भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है, दोनों भी आ जाते हैं। और ये जब नशे में चूर होता है आदमी तो मूर्खता जैसी बातें करते रहता है, मूर्खता के जैसा बर्ताव करने लगता है। और बुद्ध कहते हैं कि हम सब इस बात में शामिल है, या इस हम अलग अपने को अलग नहीं कर सकते कि अरे मैं तो कहां दारू पीता हूं, मैं अलग हूं, वो दारू पीने वाला है अविद्या में। नहीं नहीं, ये तुम दारू न पीते हुए भी नशे में चूर हो, क्योंकि हमें पता है कि हम दारू नहीं पीते, लेकिन नशा बहुत बहुत अलग अलग बातों का हमारे अंदर होता है। धर्मचारी बनने का नशा, धर्ममित्र बनने का नशा, जीएफआर में आने का नशा, जीएफआर में पहला राउंड हो गया उसका नशा, दूसरा राउंड हो गया तीसरा उसका नशा, पहला इनवाइटी शिविर इसका नशा, दूसरा इनवाइटी शिविर इसका नशा। कितने नशे हैं, हम न पीते हुए भी चूर रहते हैं हमेशा। तो ये हमारी भी, अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम भी बुद्ध के हिसाब से देखे जाए तो हम भी मूर्ख है, स्टूपिड है। द दूसरी एक बात कही है बुद्ध ने कि ऐसी जब अवस्था हमारी होती है तो हम मानो गहरी नींद में सोए हुए हैं, ऐसी हमारी अवस्था है। जैसे नशे में आदमी पूरी तरह से जब सो जाता है तो उठने का नाम ही नहीं लेता, वैसे ही हम ये गहरी नींद में अभी है। तो ये किसका परिणाम है? ये अविद्या का और ये संस्कार का परिणाम है। और ये क्यों हो रहा है? हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ विचार कर रहे हैं, तो ये सब बातें आध्यात्मिक जागृति का अभाव होने के कारण हमसे ये घट रही है। तो हम स्पिरिचुअली इमैच्योर है। अब ये नशीला आदमी जब नशे में रहता है तब वो कल्पना करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बड़े होशियारी से कर रहा हूं, बड़े चालाकी से कर रहा हूं, मुझे भी कभी कभी अचरज लगता है ये नशापान करने वाले लोगों का कि वो जब मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे रहते हैं, अभी कार का नहीं मालूम मुझे, तो वो क्या करते हैं, अभी बहुत हो गया, अभी साइकिल चलाने को नहीं आ रही अभी, तो वो क्या करते हैं, धीरे से रोड के बाजू में लेके जाते हैं उसको, रोड के एकदम बाजू में लेके जाते हैं और फिर लेट जाते हैं, इन्हें साइकिल भी खराब ना हो और अपने ऊपर भी वो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। मोटरसाइकिल वाले भी देखा मैंने, बाजू में लगा देते हैं, अभी लगाने को भी नहीं आता, वो गिर जाती है, फिर भी बाजू में लगा देते हैं उसको और फिर वहां जरा आगे जाके गिर जाते हैं जब तक वो नशा उतरता नहीं है। मेरा ख्याल ये होशियारी है, ये समझदारी तो नहीं है लेकिन होशियारी है ये। लेकिन इससे अगर हमें छुटकारा पाना है तो हम सोच समझ के काम करेंगे, सोच समझ के बातें करेंगे, सोच समझ के विचार करेंगे और सभी प्रकार की दानशूरता की गतिविधियां बढ़ाएंगे, सभी प्रकार के धार्मिक आचरण करेंगे। और ये सब बातें हमें कहां लेके जाती है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ हमें लेके जाती है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ। तो आपने चर्चा में दूसरा एक सवाल अभी हमें लेना है कि सही भी हम स्पिरिचुअली इमैच्योर है या मैच्योर है, हमारा जो परिपक्वता है सही भी हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं क्या? जैसा कहा है कि ये सब इमैच्योर आदमी के लक्षण हमने देखा, वो नशे में चूर होता है, ये करता है, वो करता है, और जो मैच्योर आदमी है वो कैसा बर्ताव करता है? तो ठीक, कुछ भी करेगा, बोलेगा या विचार करेगा तो सभी प्रकार की यानी उसमें मूर्खता नहीं रहेगी, मूर्खता से वो दूर रहता है, दानशूरता उसमें बढ़ती है, और धार्मिक आचरण उसका बढ़ता है। ये सब बातें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ हमें लेके जा सकती है। तो हम सही भी स्पिरिचुअली मैच्योर अभी हो गए हैं क्या, या होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अभी भी स्पिरिचुअल इमैच्योरिटी है हमारे अंदर, अपरिपक्वता है क्या? इसके बारे में भी चर्चा करनी है। अभी अविद्या और संस्कार, जैसा हमने कल भी देखा था कि यह पिछले जन्म का प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो पिछले जन्म से उसको हम जोड़ते हैं। अभी तीसरी कड़ी की ओर हम आएंगे, अपने पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी मैं शुरुआत कर देता हूं। तीसरी कड़ी है विज्ञान, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये तीसरी कड़ी कहां से उत्पन्न हुई है, कहां से उत्पन्न हुई है जी? संस्कार से। संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है। यहां जो विज्ञान है, इस ये जो तीसरी कड़ी है, यह जो विज्ञान है यह सर्वसामान्य विज्ञान नहीं है। तो इस विज्ञान को पटिसंधि विज्ञान कहते हैं, रीलिंकिंग बिकमिंग, रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस, ऐसा कहा गया। तो हम पटिसंधि विज्ञान के माध्यम से ही इस विज्ञान को देखने वाले हैं। और यहां दो बातें हम यहां जोड़ने वाले हैं, वो है अपना मन और अपना शरीर, यानी साइकोफिजिकल जिसको कहते हैं, ये दोनों भी बातें इसमें हम जोड़ रहे हैं। साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं। बुद्ध धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि यह सूत्र है, यह सूत्र में बुद्ध ने यह जिक्र किया है, वह सूत्र का नाम है महातन्हा संखय सूत्र। महातन्हा संखय सूत्र, तन्हा यानी तृष्णा। संख्य यानी संस्कार, संस्कारित। इस सूत्र में दो तीन बातें बताई है। इस सूत्र में ऐसा कहा गया है कि तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं गर्भधारणा होने के लिए, यानी तीन चीजों की आवश्यकता है जब कोई गर्भधारणा होती है, तो तीन प्रकार से अलग अलग बताया है वो। पहला प्रकार ऐसा बताया है कि पहले तीन प्रकार देखेंगे और फिर उसके तीन अलग अलग प्रकार देखेंगे। एक तो है माता पिता का मिलन, दूसरी बात है माता ऋतुमती होना, और तीसरी बात है पटिसंधि, या उसको गंधब्ब कहा है, गंधब्ब, गंधब्ब। इसको हम गंधर्व भी कहते हैं। तो अभी इसमें तीन बातें बताइए कि माता पिता का मिलन, लेकिन माता ऋतुमती नहीं है। और फिर तीसरी बात गंधर्व या पटिसंधि, तो इसमें दो बातें हैं, एक बात नहीं है। कौन सी बात नहीं है? हाँ जी, माता ऋतुमती नहीं है। वो मेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भावा, महा, महावारी, महावार, वारी। तो महावारी होने के बाद यानी पाळी आल्यानंतर जो पीरियड असतो तो त्याला गंधर्व म्हटलेला आहे। मराठी में बोलना पड़ा लेकिन वो क्योंकि हिंदी में मैं भी तो तीन बातें हैं, तो यहां महावारी नहीं है, दो बातें हैं, माता पिता का मिलन है और ये पटिसंधि भी है, गंधर्व भी है, लेकिन एक बात नहीं है, तो गर्भधारणा नहीं हो सकती। दूसरी एक बात कही है कि माता पिता का मिलन हो गया है और माता भी महावारी या ऐसा कहेंगे ऋतुमती हो गई है, लेकिन वहां पटिसंधि नहीं है, वहां गंधर्व नहीं है, तो भी गर्भधारणा नहीं होती। और तीसरी बात यह बताई है कि माता पिता का मिलन है, माता ऋतुमती है और गंधर्व भी वहां मौजूद है, ये तीन बातें जब होती है तब गर्भधारणा होती है। तो इसे साइंस यानी बुद्धिज्म कितना आगे गया है ये हम समझ सकते हैं। और ये तीसरा जो फैक्टर बताया है कि तीनों भी बातें वहां मौजूद है, उसको पटिसंधि विज्ञान कहते हैं, इसको पटिसंधि विज्ञान कहते हैं, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, उसको रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस या रीबर्थ कॉन्शियसनेस ऐसा भी कहा गया है। यहां ये जो रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस है या पटिसंधि विज्ञान है, यहां इसको हम आत्मा नहीं कहना है, ये आत्मा नहीं है। तो अभी समय हो रहा है तो इस ये बात को हम आगे कल बढ़ाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और पुनर्जन्म की बात आ रही है तो हमारे कान जरा ऊपर आ जाते हैं, ये जब बात जब चलती है तो यहीं रुकेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।